नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आशा है आप लोगों को आनंद आ रहा होगा अब तक रामायण में, या ज्यादा सुन सुन कर थक गए हैं, बहुत हो गया, कितना सुनेंगे। नहीं, सुबह सुन रहे हैं, दोपहर को सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने रात का शुरू नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा कि हम लोग दिन भर कीर्तन करते हैं, रात क्यों बर्बाद करते हैं सोने में। तो तब से श्रीवास आंगन में रात को कीर्तन होता था, दिन में बाहर नगर संकीर्तन और रात में उद्दंड कीर्तन। तो वैसे अभी हम लोगों के लिए अवसर है, ये चाहे तो रात भर कीर्तन कर सकते हैं, जब तक आसपास वाले आकर कंप्लेन ना करें तब तक कर सकते हैं। तो रामायण की कथा में अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कल जन्म की चर्चा की थी, और कैसे फिर विश्वामित्र मुनि आते हैं श्री रामचंद्र जी को ले जाने के लिए, और भक्त दशरथ महाराज से मांगते हैं, दशरथ महाराज मना कर देते हैं। तो जब दशरथ महाराज से कहा तो दशरथ महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए, दुखी हो गए, हैरान हो गए कि कैसे ये कहा। उन्होंने कहा अभी राम तो 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, इतने छोटे थे वो, तो आप राम को ले जा रहे। वो भूल गए कि जब उन्होंने विश्वामित्र मुनि ने मांगा राम को कहा, तो रामचंद्र जी के विषय में विश्वामित्र मुनि ने कहा अहम वेत्ति महात्मानम रामम च प्रकाशम। अहम वेत्ति महात्मानम, हे महात्मा मैं जानता हूं राम का प्रकाश क्या है, अर्थात राम कौन है। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ भी जानते हैं कि क्या है, कौन है राम। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, खैर ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मैं जानता हूं कौन है। तो उन्होंने यहां पर ऐसे ही दशरथ महाराज को एक इंडिकेशन दिया कि ऐसा मत सोचो कि मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं राम को जानता हूं कौन है। तो दशरथ महाराज ने कहा 16 साल का भी नहीं हुआ, इसको कैसे मैं भेज दूं, मैं अपनी पूरी सेना भेज देता हूं। उन्होंने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए। तो उस समय जब विश्वामित्र मुनि क्रोधित हुए तो अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि वशिष्ठ मुनि ले गए और वशिष्ठ मुनि ने समझाया दशरथ को, आपने पूर्व काल में बहुत तपस्या की थी भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए, और अब जो आए हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी को सीधे भगवान कहकर संबोधित नहीं किया गया है, लेकिन हमें जब हम सुन रहे हैं तो ये दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान, पहली चीज रामचंद्र जी भगवान है, और दूसरी चीज वो केवल एक मानव की भूमिका निभा रहे हैं। तो रामायण में बहुत सारे, वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन कुछ कुछ प्रसंगों में भगवान की भगवत्ता को प्रकट कर दिया गया है कि वो भगवान है, वैसे उन्हें साधारण व्यक्ति दिखलाया है, कहीं ये नहीं बताया कि वो भगवान है। लेकिन कुछ कुछ प्रसंगों में, जैसे जब जटायु की मृत्यु हुई भगवान की गोद में और भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि का अंतिम संस्कार करो, उस समय भगवान ने कहा कि मैं जटायु को मोक्ष प्रदान करता। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो अध्यात्म रामायण में वर्णन किया वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये भगवान है तो इसको इनको जाने दो, इनको कुछ नहीं होगा। और वो विश्वामित्र इसलिए नहीं आए हैं, विश्वामित्र आए हैं क्योंकि भगवान की नित्य संगिनी श्री सीता देवी, श्रीमती सीता देवी भी प्रकट हो चुकी हैं और उनको मिलाने के लिए आए हैं। जब जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनकी नित्य संगिनी आती हैं। जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, सभी अवतार उनसे आते हैं, इसी प्रकार सभी अवतारों की नित्य संगिनियां भी श्रीमती राधा रानी से आती हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की नित्य संगिनी हैं। तो कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी जितनी भी नित्य संगिनियां हैं उनकी स्रोत हैं। कल हम लोग परसों एक भजन गा रहे थे दोपहर में, राधा भजन यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। तो उसमें एक वर्णन आता है रमा सत्या उमा, ये सब उनके विस्तार हैं। तो जैसे कृष्ण से विस्तार होता है ऐसे ही श्रीमती राधा रानी से विस्तार होता है। तो जब भी कोई अवतार प्रकट होते हैं तो साधारणतः उनकी नित्य संगिनियां भी उनके साथ प्रकट होती हैं। तो सीता देवी प्रकट हो चुकी हैं और उनसे केवल मिलाना है। तो खैर दशरथ महाराज ने स्वीकार किया, राम और लक्ष्मण को दिया और उनसे कहा कि आज से ये तुम्हारे गुरु हैं, जो ये कहें वो बात को स्वीकार कर लेना। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों चल दिए उनके साथ में, पिता के आदेश का पालन करते हुए अब गुरु के आदेश का पालन करना है। तो विश्वामित्र मुनि लेकर जा रहे हैं। देखिए राम जी में थोड़ा भी अहंकार नहीं था, न अपने भगवान होने का, न बहुत बड़े राजा के पुत्र होने का। जंगल में चल दिए ऋषि मुनि के साथ, विश्वामित्र मुनि चल रहे हैं उनके साथ, पीछे पीछे चल रहे हैं कि आप जहां कहेंगे हम वहां चलेंगे। कोई अहंकार नहीं। भगवान अपनी लीलाओं से भी हमें ज्ञान देते हैं। जब भगवान इस जगत में आते हैं और हमें ज्ञान देना चाहते हैं तो कई मार्ग अपनाते हैं। पहला, वो सीधा ज्ञान देते हैं स्वयं, जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता दी, सीधा ज्ञान दिया स्वयं भगवान ने, ये करना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दूसरा, भगवान आचार्यों के द्वारा ज्ञान देते हैं, और तीसरा, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा ज्ञान देते हैं कि जब उनकी लीलाएं सुने देखें तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। तो रामचंद्र जी चल दिए, ये नहीं सोचा कि मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मुझे क्या आवश्यकता है इस ऋषि के पीछे चलने की, या मैं तो इतने बड़े राजा का पुत्र हूं क्यों मैं इनके पीछे पीछे चलूं। कोई अहंकार नहीं। दरअसल अहंकार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा विषैला पदार्थ है कहना चाहिए। जैसे जब एक मान लीजिए बहुत सारा दूध है, एक दो लीटर दूध लिया आपने और उसमें केवल एक बूंद आप नींबू की डाल दीजिए तो क्या होगा, दूध फट जाता है, तो दूध दूध नहीं रहता। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में बहुत से अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन एक बूंद अहंकार की है तो वो हमारे सारे जीवन को समाप्त कर सकता है, नाश कर सकता है, जैसे एक बूंद नींबू की सारे दूध को फाड़ देती है। तो इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार क्या है, अहंकार में हर व्यक्ति सोचता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हर अहंकारी व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। अगर उदाहरण दें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक दीवार है और इस दीवार में कई ईंट लगी हैं, तो हर ईंट सोचती है कि ये दीवार मेरे ऊपर टिकी हुई है, ये अहंकार है। क्योंकि हम सब एक बहुत बड़ी व्यवस्था के केवल हिस्सा मात्र हैं। व्यवस्था भगवान ने की है, हमें अपना अपना भाग निभाना है। ना तो हम भगवान हैं, ना ही हमारे ऊपर ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसीलिए अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो रामचंद्र जी चले और चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे और विश्वामित्र मुनि ने कहा बैठो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो वहां पर उन्होंने उन्हें अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। हाँ, शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र में अंतर क्या है, शब्द हम लोग कई बार सुन चुके, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र। तो जो शस्त्र होते हैं जैसे भाला, तीर, कमान, तलवार, इसे शस्त्र कहलाते हैं, और जो मंत्रों की शक्ति से चलते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं। वही तीर, वही चीजें जो मंत्रों की शक्ति के द्वारा चलाई जाती, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र है तो वो मंत्र की शक्ति से चलता है। तो ऐसा नहीं कि उसको लेकर चलना पड़ता है, बस मंत्र उच्चारण करते हैं प्रकट होता। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनमें से दो प्रमुख दिए उनको, बला और अति बला। ये दो अस्त्र दिए और कहा कि ये दो बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैंने बड़ी तपस्या के बाद इनको प्राप्त किया है, मैं आपको देता हूं क्योंकि आप में इनकी पूर्णता होगी। लेकिन है क्या ये, इनकी इतनी शक्ति है कि इनके आपके पास होने मात्र से आपको कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, थकान नहीं होगी। अगर आप सो भी रहे होंगे तो भी शत्रु आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये इतना शक्तिशाली ये दो अस्त्र हैं, ये मैं आपको प्रदान कर दूं। तो रामचंद्र जी ने बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान से उनको स्वीकार किया। फिर जब आगे चले तो ये जो उनकी यात्रा थी, अब जो यहां से प्रारंभ हुई और जो मिथिला तक होगी, रामचंद्र जी बीच में कई प्रश्न पूछते चल रहे हैं। भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन प्रश्न करते हैं, अरे ये कैसा स्थान है, ये कैसा वन है, ये कौन सा आश्रम है, ये कौन सी नदी है, जहां जहां जा रहे हैं पूछ रहे हैं। तो प्रश्न आता है, भगवान को पूछने की क्या आवश्यकता है, क्या उनको ज्ञान की कमी है? सारा ज्ञान तो उनसे ही आता है, सारे वेद उनसे आते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान उन्होंने दिया। इस जगत में ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो भगवान ने दिया, तो सारा ज्ञान उनसे आता है, तो फिर भगवान क्यों पूछते हैं? भगवान हर स्थान का महत्व इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि भगवान उस स्थान के महत्व को प्रकट करवाना चाहते थे विश्वामित्र मुनि के द्वारा, कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है, देखो इस स्थान में क्या हुआ, तो इसलिए पूछते जा रहे थे। तो भगवान जब एक स्थान पर आए, बहुत सुंदर आश्रम था वहां पर जिसका नाम था पुण्य आश्रम, तो उन्होंने पूछा ये कौन सा आश्रम है, बड़ा सुंदर स्थान है। तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि पूर्व काल में शिवजी ने यहां तपस्या की थी, और शिवजी जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने कामदेव को भेजा था यहां पर शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए। तो जब कामदेव आए, वो ऐसा स्थान था, बड़ा सुंदर स्थान, जहां सरयू और गंगा का संगम हो रहा था। आप में से जो अयोध्या गए हैं वो जानते हैं कि अयोध्या सरयू के तट पर है, फिर आगे चलकर गंगा का, जब आगे चले उस तरफ तो गंगा भी प्रकट हुई। तो उस समय उन्होंने कहा कि यहाँ शिवजी ने तपस्या की थी और कामदेव आए उनकी तपस्या भंग करने के लिए। शिवजी ने केवल अपनी आंखें खोली और उनको देखा, देखने मात्र से वो जलकर भस्म हो गए कामदेव। शिवजी का इतना प्रताप है, इतनी तपस्या है, इतनी भक्ति है। तो फिर इसीलिए उस स्थान को कामरी या कामदेव के अरी के रूप में भी जाना जाता है, शिवजी को भी ये नाम दिया गया है। तो ऐसे उस स्थान पे हुए, फिर ऐसे कई स्थान बीच में आए, गंगा का स्थान आया, एक स्थान आया जहां पर इंद्र ने जब अपराध कर दिया था, पाप कर दिया था, पाप लगा था, तो इंद्र को वहां पर आकर अभिषेक करवाया था ऋषि मुनियों ने, जिससे वो शुद्ध हो गए थे। तो उस स्थान पर भी वहां पर वो चर्चा हुई, और करते करते फिर एक वन में पहुंचे, बड़ा भयानक वन था, तो देखकर ही डर लगता था। तो रामचंद्र जी ने पूछा ये कैसा वन है, ये इतना भयानक क्यों लग रहा है? तो विश्वामित्र ने बताया कि ये पहले बहुत अच्छा वन था, बड़ा सुंदर वन था, ऋषि गण तपस्या किया करते थे, लेकिन अब ये एकदम सुनसान हो गया, वीरान हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ताटका नाम की एक राक्षसी रहती है। और भगवान से उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे रास्ते में आएगी तो आपको उसका वध करना है। तो रामचंद्र जी सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, पहला राक्षस मार रहा हूं और वो भी एक स्त्री। कृष्ण भी जब आए थे तो उन्होंने पहला जो राक्षस मारा वो भी एक स्त्री थी, पूतना। शास्त्र में कहा गया है कि हमें वृद्धों का वध नहीं करना चाहिए, बालकों का नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, गाय का नहीं और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। और यहां वही श्री रामचंद्र भगवान जिन्होंने वेद दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, शास्त्र में नियम दिया है, स्त्री को मारने वाले। तो खैर ताटका आई बड़ी भयानक। तो विश्वामित्र मुनि ने पूछा कि ये राक्षसी कैसे हो गई। तो विश्वामित्र मुनि ने इतिहास सुनाया, उन्होंने कहा कि सुकेतु नाम के एक यक्ष थे, उनकी पुत्री है ये ताटका। यक्ष देवताओं में आते हैं। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। यक्ष राक्षस में नहीं है, तो यक्ष की पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी। हां लेकिन इनके अंदर 1000 हाथियों का बल था। 1000 हाथियों का बल कहां से आ गया, रामचंद्र जी ने पूछा। तो उन्होंने बताया कि दरअसल सुकेतु ने बड़ी तपस्या की थी, वो एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन पुत्री प्राप्त हुई। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पुत्र की इच्छा थी, पुत्री प्राप्त हुई है, तो पुत्री को ही 1000 हाथियों का बल दे दिया। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, इसको ही शक्तिशाली बना देता हूं। तो सुकेतु की पुत्री थी और उनका विवाह हुआ था सुंद नाम के एक यक्ष से, और उनके पुत्र हैं मारीच। ताटका के पुत्र हैं मारीच। तो ये यक्ष होकर ये राक्षस कैसे हो गए? तो ये अगस्त्य मुनि के श्राप से हुआ। अगस्त्य मुनि के प्रति इनके पति ताटका के पति सुंद ने एक अपराध कर दिया, तो उन्होंने उसको जलाकर खत्म कर दिया, मार डाला। तो जो पुत्र था बड़ा क्रोध हो गया, वो भागा, तो उसको कहा तुम असुर हो जाओ, तो वो मारीच हो गया। और ये भी क्योंकि इनके अंदर शक्ति थी तो ये उनको मारने के लिए भागी, तो इनको भी उन्होंने असुर बना दिया, राक्षसी बना दिया। तो ताटका राक्षसी बनी अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण। बहुत सुंदर थी पहले, लेकिन बड़ी कुरूप हो गई, राक्षसी बनी। तो ये इतिहास बताया विश्वामित्र मुनि ने और कहा सावधान रहना, हम अब इस वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रवेश किया, थोड़े समय बाद ऐसा लगा मानो आंधी आ रही है, और विश्वामित्र मुनि ने कहा रामचंद्र जी को तैयार रहो। तो देखा धीरे 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 आते अचानक ताटका सामने प्रकट हो गई, बड़ी विशाल। रामचंद्र जी ने देखा रे इतनी विशाल है। और फिर ताटका ने उनको खाने का प्रयास किया, युद्ध शुरू हुआ। ताटका ने कई प्रकार से युद्ध किया, कभी पर्वतों को फेंकती थी, पत्थरों को फेंकती थी, बहुत कुछ प्रयास किया रामचंद्र जी को मारने का, लेकिन मार नहीं पाई। और रामचंद्र जी भी युद्ध कर रहे मार नहीं रहे ताटका को। और फिर विश्वामित्र मुनि उन्हें देख रहे हैं, तो रामचंद्र जी को लगा कि अच्छा एक चाहते हैं, तो उन्होंने उसके दोनों हाथ काट दिए, मारा फिर भी नहीं। और लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे उसके, पता नहीं लक्ष्मण को नाक कान से क्या थोड़ा बैर है, इसके भी काटे और आगे चल के शूर्पणखा के भी काटे थे। तो लक्ष्मण जी अच्छा हुआ हम लोगों के सामने नहीं आए, नहीं तो हम लोगों को संभालना पड़ता था। तो लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए और ताटका के हाथ काट दिए, और भगवान फिर भी मारने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत हो गया, इसको दंड मिल गया। वो उस समय भी युद्ध कर रही थी, इतनी मायावी शक्ति थी उसके अंदर। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने आकर कहा कि राम इसको मारो, ये मत सोचो कि ये स्त्री है, मुझे इसको मारना नहीं चाहिए, ये तो राक्षसी है, समाज में उत्पात मचा रही है, इसको मारा जा सकता है। और पूर्व काल में भी इंद्र ने मंथरा को मारा था, स्वयं विष्णु ने भृगुपत्नी को मारा था, तो ऐसा नहीं है कि कभी किसी स्त्री को मारा नहीं गया, इसीलिए तुम मारो। तो ये इतिहास है कि मंथरा, ये हमारी कैकई वाली मंथरा नहीं है, वो तो अभी आएंगी। पूर्व काल में इंद्र ने ये मंथरा को मारा था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी, उत्पात कर रही थी समाज में। भगवान ने भृगु की पत्नी को मारा, उसका कारण ये था कि शुक्राचार्य जी भगवान शिव जी की तपस्या करने चले गए और अवसर पाकर देवताओं ने आक्रमण कर दिया कि अब तो गुरु है नहीं, इनके आक्रमण कर देते हैं। तो असुर सब हताश होने लगे, तो उस समय भृगु पत्नी जो शुक्राचार्य जी की माता है, तो भृगु पत्नी ने फिर अपने बल से सारे देवताओं को परास्त करना प्रारंभ कर दिया। तो सारे देवता त्राहि त्राहि करते हुए विष्णु के पास पहुंचे, भगवान के पास। तो भगवान फिर आए, उन्होंने आवेश किया अपना इंद्र में और फिर इनका वध किया। तो विश्वामित्र मुनि ये याद दिला रहे थे कि आप ऐसा मत सोचिए आप कुछ अकेले आप ऐसा कर रहे हो, पूर्व काल में भी हुआ है। तो फिर जब इतना कहा और रामचंद्र जी गुरु के आदेश का पालन करना चाहते थे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि के समय आते समय पिता ने कहा था कि जो ये कहें वो करना, ये गुरु समान है, तो इसीलिए उनको अब आदेश का पालन करना था। तो रामचंद्र जी के लिए आदेश का पालन करना कठिन था, हो सकता है आगे आने वाले समय में उनकी निंदा की जाती, कह रहे कैसे हैं इतने बड़े क्षत्रिय होकर इन्होंने स्त्री को मार दिया। लेकिन उस समय उनके लिए अपने गुरु का आदेश पालन करना अधिक महत्वपूर्ण था, इससे कि उनकी आगे चलकर निंदा होगी। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान दे रहे हैं, क्या बतला रहे हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, भले ही वो कभी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जब आदेश देते हैं और ऐसे अगर आदेश होते हैं जो हमें प्रिय हैं, हम बहुत जल्दी पालन करते हैं, और इतना ही नहीं लोगों को बताते हैं देखो मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। लेकिन जब गुरु ऐसी आज्ञा देते हैं जो हमारे लिए कठिन है पालन करना, या हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब हम उसका पालन नहीं करते हैं, तब हम कुछ कारण देने लगते हैं, अरे नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर उसमें हमारी निंदा भी हो, समाज निंदा करे, अरे रे क्या कर दिया इसने, जैसे रामचंद्र जी की निंदा हो सकती है, लेकिन वो निंदा से ज्यादा गुरु की कृपा महत्वपूर्ण है। गुरुज ग्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पब्लिक डिसग्रेस। तो गुरु की कृपा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पब्लिक पे क्या निंदा हो रही है हमारी, क्योंकि पब्लिक आपको मुक्ति नहीं देगी, समाज आपको कृष्ण तक नहीं ले जाएगा, गुरु ले जाएंगे। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामचंद्र जी यही दिखा रहे हैं कि ठीक है ये गलत बात है, शास्त्र के अनुसार गलत है स्त्री का वध करना, लेकिन गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा है, और अगर प्रमाणिक गुरु आज्ञा देते हैं तो मान लीजिए हमें प्रतीत हो सकता है कि वो शास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन वो शास्त्र होता है अगर गुरु प्रमाणिक है। हाँ, गुरु ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे कि आप चार नियम तोड़िए, आप जप मत कीजिए भगवान का इत्यादि, लेकिन ऐसे कुछ आदेश जो समाज के कल्याण के लिए थे विश्वामित्र मुनि ने दिए। तो रामचंद्र जी तैयार हो गए पालन करने के लिए, और फिर अब ताटका के हाथ काट चुके थे, नाक कान काट चुके थे, फिर रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया। जैसे ही ताटका मरी तो उस समय बहुत सुंदर यक्ष कन्या जो वो थी मूल रूप उनका, वो प्रकट हो गई और उन्होंने धन्यवाद दिया रामचंद्र जी को। तो यहां पर आचार्यों ने समझाया है बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ताटका ये क्या प्रस्तुत करती है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, अज्ञान का, इग्नोरेंस। तो ताटका उसकी सूचक है, और जब उस अज्ञान को मारा जाता है तो सही दृष्टि में जीव की सुंदरता प्रकट होती है। जीव की सुंदरता बाहरी नहीं है, जीव की सुंदरता शारीरिक नहीं है, जीव की सुंदरता गुणों की है, भक्ति की है, और वो प्रकट होती है जब ताटका नाम के अज्ञान को मारा जाता है। तो ताटका ये अज्ञान का सूचक है और उसको मारना अनिवार्य है। तो ऐसे रामचंद्र जी ने ताटका का वध किया और हम सबको ये ज्ञान दिया कि आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए, सही दृष्टि में सुंदरता को प्रकट करने के लिए अज्ञान को मारना अनिवार्य है। और अज्ञान को कैसे मारा जाता है? ज्ञान से। क्योंकि हमारे जीवन का आधार, भौतिक जीवन का आधार है अविद्या। सब कुछ अविद्या से आता है। हमारा अहंकार अविद्या से है। हम सोचते हैं हम ये शरीर है, ये अहंकार है, मिथ्या, अविद्या के कारण है। हमारी इच्छाएं भोग करने की अविद्या के कारण है। इसीलिए विद्या अविद्या का नाश करती है। और कौन सी विद्या? शास्त्रों में भी कई प्रकार के शास्त्र हैं। शास्त्रों में धर्म शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं, ज्ञान शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र हैं। कौन सी विद्या? वो विद्या जो हमें कृष्ण तक ले जाए, भक्ति करते हुए, भक्ति मार्ग पर चलाते हुए कृष्ण तक ले जाए, वो विद्या आवश्यक है, वो ज्ञान आवश्यक है। हम ऐसे सारे ज्ञान को त्यागते नहीं हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि अरे वो योगी हैं, हमें योगी नहीं बनना, अरे हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें कर्मी नहीं बनना। ये सही है, लेकिन कौन सा ज्ञानी नहीं बनना? शुष्क ज्ञानी नहीं बनना। केवल शास्त्रों के श्लोक पता है और उसका सार नहीं पता। वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये नहीं पता कि वेदों का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण। अगर उनमें कुछ जानने योग्य वस्तु है तो श्री कृष्ण, उसके संकलन करता श्री कृष्ण। तो ये ज्ञान चाहिए। तो ऐसा ज्ञान हमारी अविद्या का नाश करता है, ताटका का वध करता है। हम सबके अंदर वो ताटका है और उसमें हजार हाथियों का बल है, क्योंकि हमारा अज्ञान बड़ा शक्तिशाली है। हमारा अज्ञान इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण भक्ति करने नहीं देता। हमारा अज्ञान इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण को उत्पन्न होने नहीं देता। हमारा अज्ञान इतना शक्तिशाली है कि बारंबार वर्षों तक भगवान के नाम का उच्चारण करने पर भी रति न जन्मी लो, रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। ये हमारा अज्ञान है। हजार हाथियों का बल है उसमें, लेकिन मार सकते हैं भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को जीवन में उतार कर, गंभीरता से, छल से दूर जाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने ताटका का वध किया सबसे पहले, ये बतलाने के लिए कि अज्ञान दूर होना है। भगवान भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, सबसे पहले अर्जुन के अज्ञान का नाश करते हैं। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो भगवान ने भी यही किया सबसे पहले, और श्री रामचंद्र जी भी वही कर रहे हैं। ताटका का वध करो पहले, अज्ञान को हटाओ, तब देख सकेंगे। ये भक्ति की जो बातें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारी संस्था में कई ग्रंथ हैं जहां भक्ति के बड़े रसमयी बातों को दिया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु, बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण की लीलाओं को केवल सुनना कि क्या कृष्ण की लीलाएं हैं, थोड़ी बहुत जो रूप गोस्वामी ने उसमें लिखी हैं। या फिर कभी कोई हमें और अन्य ग्रंथ लाकर दे देता है, ये देखो ये गोस्वामी का ग्रंथ है, इसमें कृष्ण की अंतरंगा लीलाओं को दिया गया है, हमें लगता है बड़ा अच्छा लगेगा आनंद। बिल्कुल नहीं, हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ हम क्या समझेंगे कृष्ण प्रेम। हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ हम राधा और कृष्ण के स्थिति को क्या समझेंगे, और जब तक उनकी स्थिति को नहीं समझेंगे उनकी लीलाओं को कैसे समझेंगे। इसीलिए अज्ञान का हो दूर जाना आवश्यक है। तो ताटका का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया और फिर और आगे चले। अब ताटका का तो उद्धार हो गया, तो फिर भगवान और आगे चले। चलते चलते सिद्धाश्रम में आए, जहाँ भगवान विष्णु ने वामन अवतार के पहले तपस्या की थी और वहीं देवताओं ने आकर प्रार्थना भी की थी, तो वो सिद्ध आश्रम कहलाता है। तो वहाँ पर आए और फिर ऐसे अन्य स्थानों से होते हुए अंततः उस स्थान पर पहुँचे, वही सिद्धाश्रम जहाँ पर उन्हें ये यज्ञ की रक्षा करनी थी। तो भगवान राम ने अब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अब मैं दीक्षा ले रहा हूँ यज्ञ की और अब आप संभालना। अर्थ क्या था, वो बता रहे थे कि अगर मैंने जब यज्ञ की दीक्षा ले ली तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं। तो ऐसा होता है जब कोई यज्ञ की दीक्षा लेते हैं अर्थात यज्ञ पूरा करने की, तो जब तक पूर्ण ना हो उनको उठना नहीं चाहिए यज्ञ से। तो एक बार जब जो यज्ञ करता है या यज्ञ कराने वाले जो भी हैं वो बैठ गए तो एक दीक्षा ले लेते हैं, यज्ञ की दीक्षा। तो उसके बाद विश्वामित्र मुनि बोले मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, अभी आपको कह रहा हूं कि अब मैं ले रहा हूं, अब 6 दिन 7 दिन जो भी चलेगा यज्ञ आपको संभालना है। तो यहां भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ की दीक्षा ली और उसके बाद पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो गए। फिर चाहे राक्षस आए, वर्षा आए या कुछ भी हो, वो यज्ञ से नहीं उठेंगे, ये उनका प्रण था। तो इसको दीक्षा कहा गया है, चाहे सुबाहु आए या मारीच आए, तो इसको दीक्षा कहा गया। तो अगर इसी को हम अपने जीवन में देखें, हम लोग भी दीक्षा लेते हैं, हम दीक्षा लेते हैं किस लिए, हमारे नाम के आगे कुछ दास लग जाए ताकि सब लोग कहें बड़े वरिष्ठ हो गए हैं। तो हमारा ये थोड़ा बहुत गलत धारणाएं इस कौन में फैल गई हैं कि पहली दीक्षा हो गई मैं बहुत वरिष्ठ हो गया, ब्राह्मण हो गया तब तो पूछिए ही नहीं, और फिर कहीं गलती से संन्यास हो गया तो हम बड़े श्रेष्ठ हो गए। ये भावनाएं कुछ लोगों में आ जाती हैं, ये सही नहीं। इसलिए लोग दीक्षा के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, हमारी दीक्षा हो जाए बस। तो क्या होगा दीक्षा होके, क्या आपका समर्पण है गुरु के प्रति? या लोगों को ये लगता है कि दीक्षा होगी तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। एक बार हमें ध्यान है, एक वृद्ध माता जी थे, वो बड़े प्रार्थना करते, प्रभु जी मेरी ब्राह्मण दीक्षा करा दीजिए, अब तो पता नहीं कितना समय बाकी है, तो ब्राह्मण दीक्षा हो जाए तो फिर मैं चले जाऊं। मैंने कहा जब कृष्ण प्रेम नहीं है हृदय में तो कैसे गोलोक जाएंगे। तो इसलिए यहां दीक्षा का अर्थ, सही अर्थ हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि से कि दीक्षा मतलब कमिटमेंट, दीक्षा मतलब उन्होंने एक व्रत ले लिया कि बस अब ये करना ही है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, राक्षस आए, ये हमारी दीक्षा है कि हमने कमिटमेंट दिया, हमने वचन दिया है, हम वचनबद्ध हो गए हैं गुरु के सामने। अब चाहे बारिश आए, धूप आए, असुर आए, आंधी आए, तूफान आए, हम अपने वचनों से नहीं हिलेंगे, ये दीक्षा है कि अब हमने वचन ले लिया है। क्या वचन लिया है दीक्षा के समय? भक्त वचन क्या लेता है? हम लोग तो यही जानते हैं कि वचन लेते 16 माला जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। दरअसल दीक्षा के समय शिष्य वचन ले रहा है, कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग पर गंभीरता से चलूंगा, ये दीक्षा है। 16 माला जप करना क्या है? कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग है, नियम पालन कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग है। तो इसीलिए दीक्षा के समय वो ये ले रहा है वचन कि मैं कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग पर गंभीरता से चलूंगा आपकी आदेशानुसार। तो कितनी गंभीरता से हमें उस वचन का पालन करना चाहिए, जैसे विश्वामित्र मुनि करते हैं कि एक बार हो गया अब नहीं हिलेंगे। तो फिर उस समय भगवान राम वहां खड़े रहे 6 दिन और 6 रातों तक, 6 दिन 6 रात यज्ञ चल रहा था। रामचंद्र जी अपना राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर वो खड़े हैं रक्षा करने के लिए। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी खड़े रहे, पहले दिन कोई असुर नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे नहीं, ऐसे 6 रातें निकल गई, 6 दिन 6 रात। और फिर जब प्राय अंतिम आहुति का समय आया यज्ञ के लिए, उस समय आकाश मार्ग से मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस आए, तो बड़े प्रभावी राक्षस, बड़े खतरनाक। तो उन्होंने सब गंदगी फेंकना शुरू किया कि यज्ञ को, यज्ञ में अगर कोई भी अशुद्ध वस्तु फेंक दी जाए, जैसे हड्डी का टुकड़ा फेंक दिया या कुछ खून इत्यादि फेंक दिया, तो फिर वो अशुद्ध हो जाता, यज्ञ नहीं पूरा होता। तो उन्होंने सोचा इसको करेंगे, तो करने का प्रयास किया, लेकिन रामचंद्र जी ने रोका। तो उस समय युद्ध हुआ और रामचंद्र जी ने एक बाण चलाया, मारीच को मारा, तो मारीच को एक बाण लगा, वो बाण उसको लेकर वहां से समुद्र में 800 मील अंदर ले गया उसको, वहां जाकर गिरा मारीच। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्थान को जहां मारीच गिरा उसको मारीच असौ कहा जाता है, या आजकल की भाषा में मॉरिशस कहते हैं। अभी पता नहीं कि मारीच वहीं गिरे थे या क्या था, लेकिन लोग कहते हैं कि वो स्थान है मॉरिशस। तो सही है, समुद्र में अंदर जाकर हो भी सकता है इतनी दूर फेंका। और सुबाहु को मार दिया भगवान ने। तो यहां पर आचार्य गण समझाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ऑफकोर्स मारीच को क्यों छोड़ दिया ये हम सब जानते हैं। अगर मारीच को छोड़ा नहीं होता तो बाद में रावण सोने का मृग किसको बनाकर लाता। तो भगवान ने छोड़ दिया था कि ठीक है तुमको बाद में मारूंगा, अभी नहीं, अभी तुम्हें और कुछ करना है, और थोड़ी गड़बड़ करनी है, उसके बाद में फिर तुम्हें मारेंगे। और सुबाहु को मार दिया, तो एक इसलिए छोड़ दिया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य समझाते हैं कि सुबाहु को मार दिया और मारीच को दूर भगा दिया। तो जब हम गुरु को समर्पण करते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं भक्ति में, तो उस समय से पहले तक हमने जितने पाप किए हैं वो सुबाहु है। उस समय तक, समर्पण करने से पहले तक हमने जितने पाप किए हैं वो सुबाहु हैं, गुरु उसको मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं। दरअसल दीक्षा ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गुरु को समर्पण एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली चीज है, लेकिन हम लोग इसके महत्व को भूल चुके हैं। हमें बस इतना ही लगता है यज्ञ होगा, बैठेंगे, थोड़ा माला मिलेगी, नाम मिलेगा, लोग तालियां बजाएंगे और हो गई हमारी दीक्षा, फिर कुछ भिक्षा विक्षा मांग लेंगे इत्यादि। लेकिन दीक्षा बड़ी गंभीर चीज है। तो गुरु सुबाहु को मार देते हैं, सुबाहु अर्थात वो सारे पाप कर्मों के फल, वो सारे अपराध जो हमने, वो जो सारे पाप जो हमने भक्ति में आने से या समर्पण करने से पहले किए थे उसको वो मार देते हैं। तो फिर मारीच कौन है? सुबाहु को तो मार दिया, तो मारीच क्या है? अगर हम सही दृष्टि में समर्पण करते हैं गुरु को, प्रामाणिक दृष्टि से अगर हमारा समर्पण सही है, तो गुरु आगे आने वाले पापों को भी दूर भगा देते हैं। वो तो अभी आए नहीं इसलिए उसको मार नहीं सकते, लेकिन उनको भी दूर भगा देते हैं, जैसे मारीच को भगवान ने बहुत दूर भेज दिया। तो इसीलिए समर्पण या गुरु की सेवा के महत्व को हमें समझना चाहिए। यही एक मार्ग है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का और उनको प्राप्त करने का, कि हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण जाएं, उनकी सेवा करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न पूछें, उनकी सेवा करें और नम्रता से उनके उनसे आचरण करें। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि शिष्य को ये तीन उपहार अपने गुरु को देने चाहिए, नम्रता, जिज्ञासा और सही सेवा भाव। तो इस तरह अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे जो पूर्व किए गए पाप हैं उनको वो सब समाप्त कर देते हैं, और आगे करने वाले, आने वाले, हो सकता है हमारी बद्ध अवस्था के कारण, उसको भी दूर कर देते हैं। इसीलिए दीक्षा को नया जन्म कहा जाता है। बालक पहले जन्म लेता है अपने पिता से, फिर जन्म लेता है गुरु से, द्विज हो जाता है। द्विज मतलब जो जिसका दो बार जन्म हुआ है, तो गुरु से जन्म होता है। तो वो जन्म सही जन्म है, क्योंकि वो जन्म अन्य सारे जन्मों को समाप्त कर देता है। पिता से हुआ जन्म आपको और कई जन्मों के लिए तैयार करता है, गुरु से हुआ जन्म आपके सारे जन्मों को समाप्त करता है, इसीलिए वो सच्चा जन्म माना गया है। तो ऐसे भाव में हमें गुरु की शरण जाना चाहिए, इस भाव में, इस दृष्टि से गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह हमारा सेवा का भाव होना चाहिए कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु योग्य हैं। गुरु वो व्यक्ति हैं जो कृष्ण के निकट हैं और हमें कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे कई कई जन्मों का लक्ष्य रहा है और अब इस जन्म में हमें अवसर मिला है। तो इसीलिए ये भावना हमें उत्पन्न करनी चाहिए कि किस तरह हम मारीच और सुबाहु को, मारीच को दूर कर सकें और सुबाहु का वध कर सकें। तो इस तरह से अब वध हो गया और फिर सभी लोग, अब जब वध हो गया, समाप्त हुआ, तो स्वाभाविक है रामचंद्र जी को वापस जाना है। तो उन्होंने देखा कि सब लोग एक तैयारी कर रहे हैं किसी बहुत बड़े यज्ञ में जाने की। तो विश्वामित्र मुनि से पूछा, तो विश्वामित्र मुनि ने कहा रामचंद्र जी से कि हम सब मिथिला जा रहे हैं, सारे ऋषि मुनि सब मिथिला जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है, जनक महाराज ने बुलाया है, तुम भी चलो। तो जब श्री राम को आदेश हुआ, देखिए इस लीला में जब तक वो विश्वामित्र मुनि के साथ रहे, एक बात रामचंद्र जी ने बहुत दिखलाई, सक्षम होते हुए भी जब तक आदेश नहीं हुआ रामचंद्र जी उठे नहीं, रामचंद्र जी ने कार्य नहीं किया। तो जब अब कहा कि चलो, तो उन्होंने कहा ठीक है, राम और लक्ष्मण तैयार हो गए। अब सब ऋषि मुनियों के साथ उनके ही संग में, उनके ही तरह रहते हुए वो मिथिला की ओर निकले, और मिथिला पहुंचते पहुंचते बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं, जिनमें गंगा देवी के प्राकट्य की भी कथा आती है कि गंगा देवी कैसे प्रकट हुई और क्या महत्व है गंगा देवी का। चैतन्य भागवत में गंगा देवी का बड़ा महत्व दिया गया, ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है, भागवत में दिया गया है गंगा देवी, निम्न गानाम यथा गंगा। तो ऐसे इन गंगा देवी का भी वर्णन आएगा रामचंद्र जी जैसे जैसे चलेंगे मिथिला की ओर, और भी कई स्थानों से होते हुए फिर मिथिला पहुंचेंगे, और बीच में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान आएगा जहां पर वो एक किसी का उद्धार करेंगे। तो आप जानते किसका उद्धार करना है, तो वो अब तो रामलीला हो चुकी है, लेकिन फिर भी कल चर्चा करेंगे। तो रामचंद्र जी उद्धार भी करेंगे, और ऐसे करते हुए वो फिर पहुंचेंगे मिथिला। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे भगवान राम के इस सिद्धाश्रम से मिथिला तक की जो यात्रा है उसकी, और फिर मिथिला पहुंचकर स्वाभाविक है भगवान के विवाह का वर्णन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। जहां तक हमें पता है कि पहली बार जब पहुंचे थे, पहली बार, क्योंकि विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के पास कई बार आए, पहली बार तो सेना के साथ आए थे, फिर उन्होंने आक्रमण किया था, फिर उसके बाद वो ऋषि बनने के बाद भी कई बार उन्होंने युद्ध किया उनसे, जब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन गए। तो शायद ये पहले का हमें ठीक से नहीं पता, लेकिन पहली बार का है। बाद में तो क्योंकि उन्होंने ऐसे ही उनको हरा दिया था केवल दंड के बल पर, तो हो सकता है पहले का हमें ठीक से ध्यान नहीं है, पढ़ना पड़ेगा प्रभुपाद किस विषय में कहते हैं। और कोई प्रश्न है? शांति।
जब राम और कृष्ण भगवान का अवतार होता है तो लाखों जीव उनका दर्शन करते हैं, तो क्या सभी का उद्धार होता है?
जब भगवान राम और कृष्ण का अवतार होता है तो लाखों जीव उनके दर्शन करते हैं, तो क्या सभी का उद्धार होता है? निश्चित सभी का उद्धार होता है। जो भगवान के दर्शन कर लेते हैं उनका उद्धार तो होता है, चाहे वो असुर हों, या जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं दुर्योधन इत्यादि, उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए, लेकिन सही भाव में नहीं किए थे, मगर फिर भी उनका उद्धार हुआ। क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है कि महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गए वो सब वैकुंठ गए, तो उसमें दुर्योधन भी तो मारा गया, कर्ण भी तो मारे गए, तो सभी मारे गए, तो वो सभी गए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान के संपर्क में जो भी आता है तो उसका उद्धार भगवान कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये उस जीव का महत्व नहीं है या उस जीव की साधना नहीं है, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि वो जब आते हैं तो सारे जीवों का। जब रामचंद्र जी आए और जब वापस जा रहे थे वो, तो अपने साथ सारे अयोध्या वासियों को ले गए, ये वर्णन है। उन्होंने 11,000 साल यहाँ पर राज्य किया और उसके बाद सारे लोगों को ले गए। तो स्वाभाविक है जो भी भगवान के दर्शन कर लेगा उसको तो निश्चित उद्धार होना अवश्य। हो सकता है कभी भगवान उसको धाम भेज दें, कभी कहीं और कार्य को पूर्ण करने के लिए, लेकिन अधिकतर जितने लोग होते हैं जो भगवान के दर्शन करते हैं निश्चित मुक्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जिन जिन ने किया वो लोग मुक्त हो गए। महाप्रभु जब यहाँ आए तो प्रचार की कई विधियों को अपनाया और उसमें से एक विधि थी साक्षात, जहां वो होते थे लोग उनको देख कर हरी हरी बोलने लगते थे, उनके कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था केवल महाप्रभु को देखकर। तो भगवान को देखना ये तो कोई साधारण बात नहीं है, और जो लोग देखते हैं उन निश्चित उनका उद्धार होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न?
इंद्र शिव जी की तपस्या क्यों भंग करना चाहते थे?
इंद्र शिव जी की तपस्या क्यों भंग करना चाहते थे? क्योंकि इंद्र हमेशा चिंता में रहते हैं, कोई भी तपस्या क्यों ना करे। अभी पता नहीं ब्रह्मा जी ने तपस्या नहीं की, क्योंकि अगर वो भी किए होते तो इंद्र ने उनका भी भंग करने का प्रयास किया होता। इंद्र है ही ऐसे, कृष्ण उनके माता के कुंडल लाकर देते हैं, नरकासुर को मारकर उनके माता के कुंडल लाकर वापस देते हैं अभी अभी, और जाते जाते बस एक पारिजात वृक्ष को खाड़ लेते हैं, इंद्र युद्ध करना शुरू कर देता है उनसे, भगवान से, जिसने इतनी जो ला के जानते भगवान, उनसे युद्ध शुरू हो गया इंद्र का, अरे नहीं ले जा सकते। अरे भगवान का अभी कृष्ण भी कभी कभी अड़ जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन कृष्ण अच्छा मुझे कैसे मना कर सकते, अरे नहीं ये स्वर्ग के बाहर नहीं जाएगा। तो भगवान ने क्यों किया? ये दिखलाने के लिए कि इस जगत के नियम उन पर लागू नहीं होते हैं, अगर कोई दूसरा मनुष्य होता स्वाभाविक है नहीं ले जा पाता, ये तो भगवान है, अगर उनकी इच्छा हो गई है तो वो पारिजात वृक्ष क्या वो सारा स्वर्ग उठा के ले जा सकते हैं और पृथ्वी पर कहीं कोने में डाल सकते हैं, तो इंद्र भूल गया। तो ऐसे ही इंद्र जब देखते हैं कि उनको हर चीज में खतरा नजर आता है तो भगवान तक पर आक्रमण कर सकते हैं, तो फिर शिव जी की बात क्या है, शिव जी को भी उन्होंने प्रयास किया परास्त करने का। ऐसा और कोई प्रश्न? हाँ जी। उस समय का जो यज्ञ का नियम था, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय, तो वो यज्ञ करके युग धर्म का पालन कर रहे थे, तो इसलिए यज्ञ तो उन्हें करना ही था। तो रामचंद्र जी थे वो तो स्वाभाविक है, पहला कारण कि यज्ञ उस समय नियम था, दूसरा कारण भगवान थे लेकिन वे एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे उस समय, तो इसीलिए जैसे हैं। अब देखिए अगर विश्वामित्र मुनि उन्हें भगवान मानते तो उनको खड़ा करते रक्षा करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि आप खड़े हो जाओ दरवाजे पे कोई आए नहीं, तो साधारण मानव की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए आचरण भी वैसा ही है। ठीक है। और फिर यज्ञ तो उस समय का नियम था, उस समय हर चीज के लिए यज्ञ होता था। जैसे मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, जब जिस चीज का नियम होता है उसको करना होता है। जैसे सतयुग में है तपस्या नियम है, तो किसी को विवाह भी करना होता था तो उनको कहते थे जाके तपस्या करो। दक्ष ने क्या कहा अपने पुत्रों को, जाओ तपस्या करो, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, बोले जाओ तपस्या करो, तपस्या करके आगना फिर विवाह करना। वो तो अलग बात है नारद मुनि ने क्या किया, लेकिन तपस्या किया। तो ऐसे यज्ञ किया करते थे हर चीज के लिए, और द्वापर में भगवान की सेवा किया करते थे। तो कलयुग में जपा करते हैं, इसलिए भक्तों को कहा जाता है विवाह करने के पहले 64 माला जप करो तब होगा फिर। तो अब कम से कम उतना तो करो, तपस्या नहीं कर सकते तो इसीलिए अलग अलग स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया। ठीक है। नास्तिक व्यक्ति अगर भगवान के विग्रहों का दर्शन करेगा तो वो भी वैकुंठ जाएगा निश्चित, क्योंकि भगवान शुद्ध कर देते हैं। इसका प्रमाण रामानुजाचार्य की लीला में आता है। रामानुजाचार्य एक व्यक्ति को लेकर आए जो बहुत ज्यादा स्त्री से आसक्त था। ऐसा हो रहा था कि भगवान का उत्सव जा रहा है, पालखी जा रही है, भगवान उसमें विराजमान है, उत्सव मूर्ति जा रही है, बड़ा शोर मच रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है, और ये व्यक्ति इतना आसक्त, रामानुजाचार्य ने देखा कि ये व्यक्ति इतना आसक्त है कि वो स्त्री की आंखों में देख रहा है सबके सामने निर्लज्जता से। तो सब हैरान, मतलब उनके जो शिष्य थे रामानुजी, देखिए कैसा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, भगवान की पालकी जा रही है और वो बस स्त्री को देख रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं भगवान से। तो रामानुजाचार्य ने उसको बुलाया और उसको कहा क्या देख रहे हो इतना। उसने कहा कि इससे सुंदर आंखें मैंने कभी नहीं देखी। किसको कह रहे हैं? रामानुजाचार्य को। सोचिए क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति रामानुजाचार्य को कह रहे हैं स्त्री से सुंदर आंखें मैंने कभी किसी की नहीं देखी, बहुत आसक्त। तो रामानुजाचार्य ने कहा कल सुबह आना, अगर मैं तुम्हें इनसे सुंदर चीज दिखा दूं तो तुम मान जाओगे, इनके पर आकर्षण छोड़ दोगे। उसने कहा इससे सुंदर चीज है ही नहीं इस जगत में। उसने कहा ठीक है कल आ जाना सुबह। रामानुजाचार्य अगले दिन उनको ले गए, रंगनाथ जी के दर्शन कराए, देखो ये देखो, और उसी दिन उसने समर्पण कर दिया। तो प्रमाण है कि अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी भगवान के दर्शन सही मार्ग निर्देशन में करेगा तो उद्धार होगा। मार्ग निर्देशन सही होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो दर्शन भी करेगा तो भौतिक कामना से भगवान केवल उसकी भौतिक कामना पूरी कर देंगे, लेकिन सही मार्ग निर्देशन में करेगा जैसे रामानुजाचार्य ने कराया तो क्यों नहीं, वो भी शुद्ध होगा। और मान लीजिए कि अगर वो शुद्ध नहीं भी हो रहा उस समय के लिए, मार्ग तो प्रशस्त हो जाएगा उसका अगर भगवान के दर्शन कर रहा है तो। ठीक है।
वो लोग जो भगवान के लीलाओं में जन्म लेते हैं क्या वो कुछ विशेष होते हैं?
ये प्रश्न आपका है या उधर से? अच्छा उत्तर क्या, जो लोग भगवान की लीलाओं में
के समय जो जन्म लेते हैं वो भी कुछ विशेष होते हैं?
भगवान की लीलाओं के समय जो जन्म लेते हैं वो कुछ विशेष कुछ नहीं, बहुत विशेष होते हैं वो लोग। भगवान की लीलाओं में अलग अलग प्रकार के लोग भाग लेते हैं। पहले प्रकार के होते हैं जो उनके धाम से उनके साथ आते हैं, जिन्हें नित्य सिद्ध कहा जाता है, ये उनके नित्य संगी हैं। वो कहीं और नहीं जाते, जहां भगवान लीला कर रहे हैं बस उनके साथ जाते हैं और फिर वापस। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो साधना के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण कर चुके हैं, तैयार हैं बस गोलोक में प्रवेश के लिए भगवान के धाम में, उनको लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग बाकी है, तो वो लोग उसमें प्रवेश करते हैं। या फिर कहना चाहिए कि कई ऐसे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, जिन्होंने कई कई जन्मों तक तपस्याएं कर ली हैं, अब भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। तो भगवान की लीलाओं में भाग लेने वाले कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं, यही उनको अति विशेष बना देता है, अन्य और क्या कहना उसका। ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ जी।
ऐसा ही विष्णु पितामह के साथ में हुआ था कि उन्होंने एक सांप को फेंका था और बहुत
हम लोग जब सेवा करते हुए कुछ कार्य करते हैं तो उसमें क्या कुछ कर्म लगता है, जैसे किसी प्राणी को मार देना या उनको फेंक आना इत्यादि, तो क्या उससे भी हमें पाप लगता है? अगर भगवान की सेवा के लिए उसको किया जा रहा है तो फिर उसमें हमें पाप नहीं लगता। श्रील प्रभुपाद ने एक समय बताया, एक ऑल्टर में वो थे और वहाँ पर चूहा दिखाई दिया तो प्रभुपाद ने बहुत गुस्सा किया। प्रभुपाद ने कहा, चूहा मतलब बहुत गंदगी रखी हुई है आप लोगों ने, तो चूहा नहीं आना चाहिए ऑल्टर में। तो अगर हम उसके लिए करते हैं ताकि सेवा ठीक से हो, तब फिर उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सांप को मारने का आदेश दिया, ऊपर थे, देखा सांप, मारो उसको। और उस समय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उस समय तो अभय थे, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि अरे ये साधु होकर ऐसे क्यों मारने के लिए आदेश दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए। लेकिन फिर उनको समझाया कि ये आवश्यक था, क्योंकि अगर वो किसी भक्त को मार देता, काट लेता, तो नुकसान हो जाता। तो इसीलिए अगर हम सेवा करते हुए जानबूझकर नहीं मार रहे हैं, पहली चीज, या उठाकर अगर बाहर भी फेंक रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आप भगवान का मंदिर साफ कर रहे हो, वो अकर्म में आता है, तो उससे कर्म लगने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप मंदिर में भी देख कर जानबूझ के उसको ऐसे ही फन के लिए मारना चाहते हो, आपको लगता है चलो इसको यह मच्छर काट रहा है मार दो उसको, तो तब फिर वो ठीक नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान का मंदिर उसको साफ सुथरा रखने के लिए, ऑल्टर साफ रखने के लिए, किचन साफ रखने के लिए, ताकि भगवान का भोग शुद्धता से बने, तो कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। तो करते रहिए, और भी हो तो बाहर फेंक आइएगा, चिंता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।